ஹரி கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பிரதம் ஸ்கந்த் தசவா அத்தியாய் ஸ்லோக் சாங்கியா 31, 32 and 33. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் மே பிரவேஷ் கரனே சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்சனா கர்த்தே ஹுயே மங்களாச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹே உஸ்கா பூரா பூரா லாப் ப்ராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி ப்ராப்தி. ஓம் அஜ்ஞாந்திமிரண்டஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனா ஷலாகயா சக்ஷுரும் மிலிதமேனா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மாயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வஞ்சி விபூஷிதகரா நவநீரதாபீதாம்பரதாரும்பிம்பலதரோஷ்டபூரீந்திரசுந்தரமுகாத் அரவிந்தமித்தார் கிருஷ்ணாத்பரம் கிமபி தத்வ அஹம் நஜானி யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திர ருத்ரமருத ஸ்துவந்தி ஸ்தவி வேதி சங்கபத் க்ரமோபநிஷதி காயந்தி யம் சாமகா த்யானாவஸ்தித ததீன மனசா பஷ்யந்தி யம் யஸ்யாந்தம் ந விதோ சுராசுரகணா தேவாய தஸ்மை நமஹ. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாஸம் ததோ ஜாயாமுதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாக்வத சேவயா பகவதி யுத்தம ஸ்லோகே பக்திர பவதி நைஷ்டிகி. பஞ்சதத்வாத்மகம் க்ரிஷ்ரம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதார பக்தாக்யம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராண் கி ஜெய் ஹோ. பஹல ஸ்கந்த் தஸ்வா அத்யாய் ஜிஸ்கா சீர்ஷக் ஹை துவாரிகா கே லியே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கா பிரஸ்தான். தோ அப் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஹஸ்தினாபூர் சே அப்னி லீலா கோ சமேட்டே ஹுவே துவாரிகா கி ஓர் பட் ரஹே ஹே. சப்சே விதா லே லி ஹை ஓர் அப் ஜோ ஹஸ்தினாபூர் கி ஸ்திரியாம் தீ வோ சத்தோ பர் கடி ஹோகர் பகவான் கோ ஜப் தக் பகவான் கா ரத் திகாய் தே ரஹா ஹை தப் தக் உன்கே சாத் சாத் சல் ரஹீ ஹை ஓர் உன்கா குண்கான் கர் ரஹீ ஹை. அபி ஜஸே ஹம்னே பிச்லே ஸ்லோக் மே படா கி வோ ஸ்திரியாம் கே ரஹீ ஹை கி வோ ஸ்திரியாம் பகவான் கி பத்னியோ கி சஹாரானா கர் ரஹீ தீ. கி வோ கே ரஹீ தீ கி ஜோ ஸ்திரியாம் ஜின்ஹோனே ஜின்கோ பகவான் கி पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन्होंने निश्चित ही पिछले जन्म में बहुत ज्यादा यज्ञ किए होंगे, दान किए होंगे, तपस्याएं किए होंगे, स्नान किए होंगे, व्रत रखे होंगे, जिसके कारण उनका भगवान ने उनका पाणि ग्रहण किया है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि इन स्त्रियों का तो जन्म ही सफल हो गया, उनका जन्म स्त्री जाति को धन्य करने के लिए हुआ। ना केवल उनका जन्म सफल हुआ बल्कि उनके कारण समस्त स्त्रियों की शोभा बढ़ गई है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने भगवान की पत्नियों की सराहना की कि वैसे तो स्त्रियों के अंदर दोष होते हैं, वो डिपेंडेड होती हैं, ये उनका अशोभा है, दोष है, और दूसरा वो अपवित्र होती हैं, लेकिन जब से भगवान ने इन स्त्रियों को अपनाया है, उनको प्रेम प्रदान किया, उनको आलिंगन प्रदान किया, उनको चुंबन प्रदान किया, उनको इवन यहाँ तक बताया यासाम गृहात पुष्कर लोचन पति कि ऐसी स्त्रियों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि भगवान उनका घर छोड़कर न जात्व, वो कभी भी भगवान जाते ही नहीं है उनको छोड़कर, कभी भी न जात्व पेत्याथ ती बिर हृदय प्रशन के। और सदैव क्या करते हैं, उनको ऐसे ऐसे गिफ्ट देते हैं और ऐसी बातें करते हैं, कभी कभी ऐसी मन मोहन बातें करके उनका दिल लुभाते, किसी तरह से बस इन स्त्रियों को प्रसन्न करने की चेष्टाएं करते रहते हैं। तो पुरुषों की उपेक्षा स्त्रियों को ही ये सौभाग्य प्राप्त है। भला पुरुषों को कहाँ ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, ये स्त्रियां भगवान के लिए प्रसाद बनाती थी, उनको प्रसाद परोसती थी, सब भगवान प्रसाद लेते थे, भोजन ग्रहण करते थे, तो भगवान को पंखा चलती थी, भगवान का सिर में बाल सेट करती थी, मतलब भगवान को कंघी करना, भगवान को तेल लगाना, भगवान को मसाज करना, भगवान के लिए जब वो स्नान करने जा रहे हैं तो पानी सेट करके देना, और जब वो स्नान करके आए तो उनको आभूषण इत्यादि से श्रृंगार करना। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जितना अधिक सानिध्य स्त्रियों को भगवान का प्राप्त हुआ, भले भगवान ने कमी नहीं छोड़ी, भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतानां नमे द्वेष्योस्ति नप्य, मेरे से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस सबके साथ मैं संभव हूँ, ना किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी का पक्षपात करता हूँ। ये भजन्ते तु माम भक्त्या, अब ये स्त्रियों का हृदय ऐसा है कि वो जब प्रेम करती है ना तो उंडेल देती है प्रेम का सागर। पुरुषों में फिर भी थोड़ा सा ईगो रहता है पुरुषत्व का, लेकिन जब स्त्रियां भगवान से प्रेम करने लगती हैं तो पूरा का पूरा प्रेम तन मन धन से भगवान पर न्योछावर करते हैं। तो उन्हीं स्त्रियों की सराहना करने के बाद आज वे स्त्रियां कह रही हैं, नहीं स्त्रियों ने अपनी बात यहाँ पर समाप्त की और आज सूत गोस्वामी आगे बता रहे हैं। वे कहते हैं श्लोक नंबर 31 में, मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, एवं विधा गदंती नाम सगिरह पुरयोषितां निरीक्षणे निरीक्षणे नाभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। एवं विधा गदंती नाम सगिरह पुरयोषितां निरीक्षणे नाभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। एवं विधा गदंतीनां सगिरह पुरयोषितां निरीक्षणे नाभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। एवं विदा गदंतीनां सगिरह पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययो हरि। तो भगवान उनकी बातें तो सुन ही रहे थे, लेकिन भगवान ने उनकी इन बातों का बुरा नहीं माना। देखिए भगवान को उन्होंने कहा, यास्याम गिरहत पुष्करलो सनपति न जात्व पेत्याह हृति भीर, यानी कि वो भगवान जो त्रिलोकी को कंट्रोल करते हैं वो इन स्त्रियों के कंट्रोल में हैं और वो उनकी आज्ञा के बगैर किधर जाते भी नहीं। अब भगवान के बारे में ऐसा बोल रहा, लेकिन इससे यहाँ पर बता रहे हैं आगे सूत गोस्वामी कि भगवान ने बुरा नहीं माना। वास्तव में भक्तों भगवान परम स्वतंत्र हैं, किसी संसार में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर इतना बल नहीं है क्योंकि भगवान को रोक सके, परंतु भगवान स्वयं उनके वश में हो जाते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, है ना। तो भगवान से बहुत प्रेम करती थी ये स्त्रियां और भगवान दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान यहाँ हंसते हुए उनको अभिनंदन कर रहे हैं, निरीक्षणेन अभिनंदन सस्मितेन ययो सस्मितेन, स्मित करते हुए मुस्कुराते हुए उन वो भगवान अभिनंदन करें। हाँ आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो स्त्रियां मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, तो फिर अब जो मैं से प्रेम करेगा उसके तो मैं वश में हो ही जाता हूँ। तो ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं एवं विदा, एवं मना इस प्रकार, इस प्रकार जैसे अभी हमने स्तुति सुनी, इस प्रकार गदंती नाम उनके विषय में बातें करती तथा प्रार्थना, यानी कि बोल रही थी जैसे भगवान के विषय में, स वह जो भगवान है गिरह मतलब वाणी का पूरयोषिताम, किसकी वाणी का, जो पूरा माना जो हस्तिनापुर, योषिता माना स्त्रियां, जो हस्तिनापुर की स्त्रियों का, स्त्रियों जो बोल रही थी, निरीक्षणेन उनको देखा, भगवान ने निरीक्षण किया उनको जैसे जैसे वो बोल रही थी और भगवान ने सबकी ओर एक बार देखा। किस तरह देखा, भगवान ने निरीक्षण करते हुए अभिनंदन मतलब उनका स्वागत किया, उनको की कहा हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन नेत्र बहुत कुछ कह देते हैं, है ना। वाणी से यदि कोई कुछ नहीं कहे लेकिन फिर भी नेत्र बहुत कुछ बता देते हैं। यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो आवश्यकता नहीं है उसे बार बार जताने की, नेत्रों से हम समझ जाते हैं कि उसके हृदय में हमारे लिए प्रेम है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी ने लिखा है निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब होता है बहुत ध्यान से देखना। एक तो होता है दर्शन, दर्शन में क्या होता है सिंपल हम देखते हैं, लेकिन निरीक्षण का मतलब है बहुत ही ध्यान से देखना, मतलब बहुत ध्यान से उनको भगवान देखा और अभिनंदन नेत्रों से ही देखकर उनको, बोला कुछ नहीं भगवान ने, वाणी से कुछ भी नहीं उस समय बोला लेकिन नेत्रों से ही अभिनंदन किया, नेत्रों से ही उनको कहा कि आपने बहुत अच्छा बताया मेरे विषय में कि किस प्रकार से मैं संसार में मेरी प्रपंच अवस्था कि किस तरह जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो कारण दिखाई विष्णु के अंदर सब कुछ समा जाता है, ये वही कृष्ण है। मेरे विषय में जो जो तुम बता रही थी अभी वो बिल्कुल सही था। और आगे सुख गोस्वामी कह रहे हैं निरीक्ष नाभिनंदन, जैसे नेत्रों से अभिनंदन किया, जैसे भगवान जब उद्धव को संदेश लिखकर दे रहे थे ना, लिखा रहे थे, उद्धव को बोल रहे थे लिखो उद्धव लिखो ना, आप मैं आपको बता रहा हूँ आप लिखो, तो कृष्ण बोल सकी नहीं रहे थे। अब किस प्रकार से वो बोल देख के कृष्ण कितना प्रेम कर रहे हैं माता यशोदा से, कितना याद कर रहे हैं उनके स्नेह को, गोपियों के साथ उनका जो प्रेम था उसको किस तरह से अपने हृदय में संजो कर रखे हैं। तो उद्धव को लिखा ही नहीं पा रहे थे, मतलब जब वो बोलने जा रहे थे तो उनकी वाणी हृदय के अंदर कंठ के अंदर बिल्कुल रुद्ध हो रही थी, बात नहीं निकल रही थी, लेकिन उद्धव ने जाकर उनको बताया नेक कहे नहीं बेन अनेक कहने, मतलब वो जो पूछ रही थी कि बस इतना ही लिखा, तब उद्धव ने कहा हाँ, उनकी वाणी तो गदगद हो गई थी, रुद्ध हो गई थी, गला रुक गया था, बात निकल नहीं रही थी, लेकिन
अनेक कहने उनके नेत्रों से जो अश्रु धाराएं बह रही थी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। वो तुम खुद ही समझ लो, क्योंकि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि कृष्ण के नेत्रों में जो अश्रु हैं उनके विषय में मैं आपको बता सकूं। वास्तव में भक्तों, नेत्रों में बहुत पावर है। किसी के प्रति हमारा कितना स्नेह है, किसी के प्रति हमारी क्या भावना है, हम क्या किसी से अनुराग है हमारा, तो भगवान को भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब हम भगवान के सामने आए तो सिर्फ जब हम उनको प्रेम से देखते भी है ना, तो भगवान समझ जाते हैं कि नेत्र कितनी अभिलाषा लेकर आए हैं, कितना प्रेम लेकर आए हैं मेरे पास। तो भगवान दर्शन देते जिन नेत्रों के अंदर जितनी अभिलाषा होगी ना भगवान के दर्शन करने की, उतना ज्यादा भगवान प्रकट होंगे। भगवान कहते हैं कि जिस भाव से आप आते हो, ये यथा माम प्रपद्यते, नेत्रों में जिस भाव से जो भाव लेकर आते हो ना, तांस तथैव पचामि हम, मुझे प्रेमी के रूप में स्वीकार करोगे तो प्रीतम बन जाऊंगा, यदि मुझे बच्चा बनकर देखोगे तो तुम्हारा पिता बन जाऊंगा, और यदि सखा बन जाओगे तो मित्र बन। तुम्हारे नेत्रों में जो प्राप्त करने की जिस भाव, जिस रस को लेकर आओगे, मैं वही रस अपने अंदर लाऊंगा और उसी से तुम्हारा अभिनंदन करूंगा। तो यहाँ पर भी वो जो पूर्व स्त्रियां, पूर्व योषिता, मतलब जो हस्तिनापुर की स्त्रियां थी, निरीक्षणेन अभिनंदन, उनको देखा और अभिनंदन किया। उसके बाद कह रहे हैं सस्मितेन ययो हरि, सस्मितेन अर्थात भगवान ने उनको किस तरह देखा, हंसते हुए उनका स्वागत किया, उनको बोला हाँ बहुत आपने अच्छा बताया। और हरि, ययो का मतलब है चले गए, हरि मतलब उनके मन को सदा के लिए हर के चले गए। हरि अर्थात जो चोरी करके चला जाता है, तो एक बार जिसने भगवान को देखा है प्रेम से जिन नेत्रों ने, तो जीवन भर वो कुछ और देखकर उसकी ओर आकर्षित नहीं होते, है ना। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा अनिवर्तते, जिन्होंने साक्षात भगवान की मंद मंद मुस्कान को देखा हो, तो फिर अब उस हृदय में भौतिक कोई वस्तु प्रवेश कर सके ऐसा संभव ही नहीं है। अर्थात ये बहुत प्रसिद्ध चोर है ना, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोर, ये बहुत प्रसिद्ध है, माना हुआ चोर है, जो कि बहुत कुछ चुरा सकता है ना? वो क्या चुराता है, गोपांगिनानम पुलकित चोरम, गोपियों के वस्त्र चोरी करता है। कोई कोई लोग चोरी करते हैं, गहना चोरी करते हैं और पैसा चोरी करते हैं, धन दौलत, परंतु ये तो बहुत चोरों में चोर नहीं, ये चोरों का सरदार है, ये तो जीव का हृदय ही चोरी करके चला जाता है ना। हृदय हमारे दिल में से, हमारे मन में से हमारा हृदय चोरी करके जाता है। किसका चोरी किया, श्री राधिकाना हृदयस्य चोरम चोराकिरण्यम पुरुषम नमामि। तो ये तो चोरों का सरदार है, परंतु फिर भी इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसीलिए हम सब इसकी शरण में हैं, क्योंकि इसकी शरण में आएंगे तभी भौतिक वस्तुओं से, हमारे हृदय में से वो सब भौतिक आकर्षण को हरण कर लेगा और अपना प्रेम हमारे हृदय के अंदर डाल देगा। अनुवाद देखिए, हस्तिनापुर राजधानी की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर रही थीं और इस प्रकार से बातें चला रही थीं कि भगवान ने हंसते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान कर गए। तो भगवान अब उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। अब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि उनके साथ युधिष्ठिर महाराज ने और क्या क्या भेजा था। श्लोक नंबर 32। अजात शत्रु प्रीतनाम गोपी था यमधु द्विजः परेभ्य शंकितः स्नेहात् प्रायुङ्क्तः चतुरङ्गिणी अजातशत्रुः प्रीतना गोपी था यमधु द्विजः परेभ्य शंकितः स्नेहात् प्रायुङ्क्तः चतुरङ्गिणी अजातशत्रुः प्रीतना गोपी थायमधु द्विषः परेभ्य शंकितः स्नेहात् प्रायुङ्क्तः चतुरङ्गिणी अजातशत्रुः प्रीतना गोपी थायमधु द्विषः परेभ्यः शंकितः स्नेहात् प्रायुङ्क्तः चतुरङ्गिणी अजातशत्रु मतलब जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया हो। अजातशत्रु पता है किसको बोलते हैं? जिसका कोई शत्रु ना था, अर्थात महाराज युधिष्ठिर। तो यहाँ पर यह प्रश्न तो उठता है कि महाराज युधिष्ठिर को अजातशत्रु क्यों कहा गया? क्योंकि अभी तो वो इतनी बड़ी युद्ध करके आए हैं, तो जो विपक्ष दल थे वो सब उनके शत्रु थे ना? नहीं, वो भले किसी कोई उनको शत्रु मानता था, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। वो मानते ही नहीं थे कि कोई मेरा शत्रु है। इवन दुर्योधन इत्यादि किसी को भी अपना शत्रु कभी भी उन्होंने नहीं समझा। तो इसलिए जो मतलब उनके साथ सब लोग स्नेह करते थे, बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि वो धर्मराज थे, कभी भी अन्याय से कार्य नहीं करते थे। तो चाहे किसी भी दल में थे तो सब उनसे स्नेह करते थे, इसलिए उनको अजात शत्रु कहा गया है। और प्रीतना मतलब सुरक्षा सेना। अभी क्या किया उन्होंने? वो खुद तो अजात शत्रु हैं और एक सुरक्षा सेनाएं यानी कि जो उनकी सुरक्षा करें, किसकी? मधु द्विषा मतलब वो भगवान जिन्होंने मधु राक्षस का वध किया था। अब कृष्ण के विषय में कह रहे हैं गोपी थाय रक्षा प्रदान करने के लिए। अभी उन्होंने क्या किया कि अब जो मधु जैसे विकट राक्षस को मार सकता है उसे भला किसका भय है? उन्हें तो संरक्षक सेना के लिए यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान में इतना बल है कि वो अकेले ही किसी भी शत्रु का वध कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अजात शत्रु प्रीतनाम गोपी थाय मधु तुष्य, वो भगवान जो मधु राक्षस को मारने वाले हैं, उन्होंने उन युधिष्ठिर महाराज ने उनके लिए बहुत बहुत सेना बहुत सारी सेना जैसे चार प्रकार की है ना, कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ रथ पे जा रहे थे, कुछ हाथियों पे बैठ के जा रहे थे, हाथी व कुछ घोड़े सवार थे। तो अलग अलग सेना बहुत सारी उनके साथ भेजी। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, क्या युधिष्ठिर महाराज नहीं जानते थे कि कृष्ण के पास इतनी शक्ति है तो इतनी सारी सेना भेजने की क्या जरूरत है? और आगे कहते परेभ्यः शंकितः उनको परेभ्य यानी शत्रुओं से शंकित भयभीत। वो सोच रहे थे कि अभी अभी भगवान ने इतने सारे शत्रुओं मतलब भगवान के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसका कोई मतलब उसी खानदान का कोई और व्यक्ति आकर ऐसे कोई शत्रु आकर भगवान के ऊपर आक्रमण करे। तो जानते थे कि भगवान तो बहुत बलवान है, लेकिन फिर भी क्यों भेज रहे थे ये शत्रुओं से? भय से केवल भयभीत नहीं थे, मगर आगे कह रहे हैं स्नेहात मतलब स्नेह से, क्योंकि वो भगवान से इतना प्रेम करते थे कि वो याद ही नहीं रहता कि भगवान भगवान है। उनको याद रहता है कि बस मेरे प्रेमी, क्योंकि जहां स्नेह होता है वहां अनिष्ट की आकांक्षा कहीं ना कहीं होती है कि कहीं से कोई आक्रमण न कर ले, कहीं उसको कुछ हो न जाए, कहीं उसकी कोई हानि न हो। तो जिसे हम प्रेम करते हैं ना, तो उसके प्रति हमेशा ऐसे शंका रहती है, शंकित भय की शंका होती है, भयभीत होते हैं कि कहीं उसको कोई हानि ना पहुंचे। तो युधिष्ठिर महाराज जी भगवान से क्योंकि बहुत ज्यादा स्नेह करते थे तो शंका थी, भय था स्नेह के कारण, इसलिए बहुत सारे रथ घोड़े हाथी और बहुत सारे सुरक्षा वाली सेना उनके साथ भेजी। स्नेहात प्रायुंगत चतुरंगिणी, प्रायुंगत मतलब संलग्न करती, चतुरंगिणी मतलब चतुरंगिणी सेना, जैसे चार प्रकार की सेना जैसे मैंने अभी आपको बताई, कुछ पैदल जा रहे थे, कुछ रथ पे बैठ के, कुछ हाथी पे बैठ के, कुछ घोड़ों पे बैठ के, ये सारी सेनाएं जो है वो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के साथ भेजी ताकि भगवान सुरक्षित रहे। अनुवाद देखिए, यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिनी सेना यानी घोड़े हाथी रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रुओं से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। जानते थे, मतलब वो जानते थे कि भगवान बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, देखे थे भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की विभूतियों का दर्शन किए थे कि किस प्रकार से भगवान ने युद्ध में उनकी सुरक्षा की, किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र से पांडवों को बचाया, उत्तरा के गर्भ में जो अश्वत्थामा में ब्रह्मास्त्र भेजा था, वो सब देखा था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्नेह करते थे उनसे, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए सेना भेजी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की इच्छा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं घोड़े हाथी रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन है। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। रथवान शक्तिशाली तीरों से के बल से यहाँ तक के ब्रह्मास्त्र से भी अनेक घोड़ों तथा हाथियों से युद्ध कर सकते हैं थे। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण सबों के मित्र हैं तथा शुभ चिंतक हैं, फिर भी उनके असुर अनेक असुर स्वभाववश कृष्ण से ईर्ष्या रखते हैं, अतएव कोई इन पर आक्रमण न कर दे या यूं कहें कि स्नेहवश भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंग रक्षकों के रूप में चतुरंगिणी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे, फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया यह प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा का आज्ञा उल्लंघन नहीं करना कर सकते थे। भगवान अपने दिव्य कौतुक में आश्रित का सा खेल खेलते हैं और इस तरह कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। यह दिव्य लीला है। भगवान तथा भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है वह मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए होता है और जिसकी तुलना ब्रह्मानंद स्तर से भी नहीं की जा सकती। अत्यंत सुंदर शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान अपने आप को असहाय कर देते हैं, भले ही वो स्वतंत्र हैं, वो स्वराट हैं, वो शक्तिमान हैं, परंतु फिर भी अपने जब भक्त जब उनको कहता है नहीं नहीं कृष्ण को कोई हानि पहुंचे, जब यशोदा मैया हर वक्त उनके लिए चिंतित रहती थी कृष्ण गिर न जाए, कोई राक्षस कृष्ण को कुछ कर न दे, हर तरह से कभी यशोदा मैया गाय की पूंछ के साथ भगवान को जाड़ा लगाती थी, कभी किसी कोई है ना धागा पे न पड़ के देता था तो कोई तेल कहाँ से लेकर आती थी तो लगाती थी कि बस मेरे कृष्ण की रक्षा हो। और भगवान के यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को इतना आनंद होता है जब कोई भक्त उनको इतना स्नेह करता है, तो बहुत ज्यादा प्रेम से जब भगवान का इस तरह से दुलार किया जाता है तो भगवान भी अपने आप को असहाय स्वीकार करते हैं और उनको इतना आनंद होता है जिसकी तुलना भगवान मतलब ब्रह्मानंद स्तर तक से भी नहीं की जा सकती है। अगर किसी को ब्रह्म में लीन कर दिया जाए ना उसमें ये आनंद थोड़ी होता है, कि भगवान को अपने संरक्षा में रख के उसके साथ रहा जाए, उसके साथ प्रेम का आदान प्रदान किया जाए। उसके बाद सूत गोस्वामी कहते हैं श्लोक नंबर 33 में,
अथ दूरागतान शौरी कौरवान विरहातुरान सौनिवर्त्य दृढ़ स्निग्धान प्रायात् स्वनगरीं प्रियै अतः दूरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सौनिवर्त्य दृढ़ स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियै अथ दूरागतान् शौर्य अथ दूरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सौनिवर्त्य दृढ़ स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियै अथ दूरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सौनिवर्त्य दृढ़ स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियै अथ माने इस तरह दूरागतान् दूर तक उनके साथ साथ जाकर किसने कौरवान् शौरी, शौरी का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण के साथ। अब क्योंकि कृष्ण का राज चल रहा था तो जितने भी कौरव थे कौरवान यानी जो पांडव थे अब तो कुरु वंश है ना, तो कौरवान विरहातुरान, विरहातुरान मतलब क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दुख था, आतुर थे, विछोह के भाव से बहुत ज्यादा दुखी थे, उनको ऐसा लगा कि अब कृष्ण हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके रथ के साथ साथ ही जा रहे थे, साथ साथ ही बहुत दूर, अच्छा दूरागतान बहुत दूर दूर तक उनके साथ आए, बहुत दूर आ गया, क्योंकि वो विरह से बहुत ज्यादा व्याकुल थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो भगवान अगर चले गए तो हम इनके बगैर कैसे सुखी रहेंगे, काश ये ना जाए, हम इसको जाता हुआ नहीं देख सकते, मतलब ऐसी क्या क्या सोच सोच के भगवान के साथ ही आगे जा रहे थे। तो भगवान ने सोचा ये कितनी दूर तक आएंगे पता नहीं अभी, और तो उन्होंने भगवान ने कहा कि अब आप जाओ, वो दूर नहीं आओ, फिर वापस आपको जाने में भी इतना टाइम लगेगा, आप है ना चिंता मत करो, मैं शीघ्र आऊंगा, आप इसे समझा कर भगवान उनको वापस भेज रहे थे। कौरवान विरहातुरान बहुत ज्यादा दुखी थे ना ये, अब देखो इनमें कौन कौन हो सकते हैं, युधिष्ठिर महाराज होंगे, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब होंगे। अब देखिए इनको कितनी बड़ी सफलता प्राप्त, हस्तिनापुर के लिए उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में विजयी हुए है ना, अब हस्तिनापुर का उनको राज्य प्राप्त है, पृथ्वी पे सबसे बड़ा राज्य है उस समय हस्तिनापुर, वो उनको प्राप्त है, परंतु यहाँ पर लिखा है विरहातुरान इतने ज्यादा दुखी है, क्यों दुखी है, दृढ़ स्निग्धान, क्योंकि भगवान के प्रति उनका इतना ज्यादा स्नेह है, इतना प्रेम है कि भगवान के को जाता देखकर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी भगवान उनको समझा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सौनिवर्त्य, सौनिवर्त्य का क्या मतलब होता है कि विनम्रता पूर्वक भगवान ने आग्रह किया कि देखो अब आप जाओ, मैं जल्दी आऊंगा ना वापस, अब इस तरह से तो जाहिर सी बात है आप लोगों को अपने राजधानी में बैठना चाहिए, वहां पर आपको अपना राज्य चलाना है ना, तो इस तरह से उनको बहुत समझाया। और प्रायात स्वनगरीम प्रिय, प्रायात मतलब चले गए कहाँ पर, स्वनगरीम, स्वनगरी मतलब द्वारिका, द्वारिका की ओर आगे बढ़े, किसके साथ, प्रिय है, प्रिय है मतलब अपने प्रियों के साथ, जो संगी उनके साथ चल रहे थे, इसका मतलब है अर्जुन और सात्यकी जो भगवान के साथ जा रहे थे ना, तो उनके साथ भगवान आगे बढ़े और बाकी सब लोगों को वापस से हस्तिनापुर भेज दिया। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए, वे बावी विछोह के विचार से आतुर थे, किंतु भगवान ने उन्हें घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारिका की ओर
रवाना हो गए। तो आज भगवान आगे बढ़ गए, हस्तिनापुर को क्रॉस कर दिया, हस्तिनापुर के समस्त वासियों को वापस भेज दिया। अब भगवान द्वारिका जब तक पहुंचते हैं तो बीच में बहुत सारी जगहों को, बहुत सारे देशों को पार करते हुए जाएंगे, जहां जहां भगवान के प्रेमी भक्त रहते हैं उनसे भगवान मिलेंगे, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, और इस तरह धीरे धीरे भगवान द्वारिका पहुंचेंगे। वहां पर भगवान का रिसेप्शन होगा, स्वागत होगा, वो सब हम देखेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।